Welcome to this podcast.
इस podcast में आपका स्वागत है.
We are excited to learn from God's word.
हम परमेश्वर के वचन से सीखने के लिए बहुत उत्साहित हैं.
And to see its transforming power in our life and through it in everything around us.
और उसकी रूपांतरण करने वाली सामर्थ को अपने जीवन और हमारे इर्द-गिर्द हर एक बात पर प्रभाव डालते देखना चाहते हैं.
When you hear today's word, pause and take those Selah moments for God's Spirit to speak with you and to give you deep and intimate understanding of the scriptures.
जब आप आज का वचन सुने तो बीच बीच में रुक कर उन ईश्वरीय घड़ियों का आनंद लें जब परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करता है और आपको वचन की गहराई में ले जाता है.
So brace yourselves and enjoy this amazing journey through God's word.
इसलिए परमेश्वर के वचन में इस यात्रा का आनंद लीजिए.
Today I want to share about the enemy of faith. और there is an enemy of faith.
और आज मैं बताना चाहूंगा विश्वास का जो दुश्मन है उसके बारे में. विश्वास का एक दुश्मन है.
And the enemy of faith is condemnation.
और उस विश्वास का दुश्मन है दोष भावना.
Faith and condemnation cannot work together.
विश्वास और दोष भावना साथ मिलकर काम नहीं कर सकते.
Did you hear what I said?
क्या आपने सुना मैंने क्या कहा?
Faith,
विश्वास
and condemnation
और दोष भावना
cannot work together.
साथ मिलकर काम नहीं कर सकते.
Amen? Okay. Faith
विश्वास
works on the revelation.
प्रकाशन पर काम करता है.
Fear
डर
works on the information.
जानकारी पर काम करता है.
Some people are so informed about all the wrong things that are happening in the world.
कुछ लोगों को दुनिया में होने वाली हर एक बुरी बात की इतनी ज्यादा जानकारी है.
And that's why they are under the spell of fear.
और इसीलिए वो डर के अधीन है.
But when you fill your heart with the word of God,
लेकिन जब आप अपने दिल को परमेश्वर के वचन से भरते हो,
the spirit of fear,
जो डर की आत्मा है,
will fear you.
वो आपसे डरेगी.
Because it's just a spirit.
क्योंकि वो केवल एक आत्मा है.
And Jesus has given us authority over every kind of demonic spirit.
और यीशु ने हमें हर एक दुष्ट की आत्मा के ऊपर अधिकार दिया है.
Amen? Do you want to be that person?
क्या आप वो व्यक्ति होना चाहते हैं?
A deadly agent for the kingdom of darkness.
अंधकार के राज्य के विरोध में एक खतरनाक व्यक्ति.
So that the darkness is afraid of you.
ताकि वो अंधकार आपसे डरे.
All right, let's go to the word. Today I am going to tell you something very powerful.
हम वचन में जाते हैं. मैं कुछ बहुत ही सामर्थी बताना चाहता हूँ.
This morning as I was meditating on this.
आज सुबह जब मैं इस पर मनन कर रहा था.
Man, it was powerful.
वो बहुत ही सामर्थी था.
Let's open our Bibles to Mark 11:24.
मरकुस 11 उसकी 24 पे हम जाते हैं.
Therefore I say to you,
इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ,
whatever things you ask,
जो कुछ तुम मांगो,
when you pray,
जब तुम प्रार्थना करो,
believe that you have received them,
ये मान लो कि तुम्हें वो मिल गया है,
and you will have them,
और तुम्हें वो मिल जाएगा.
Jesus commanded us to receive the things,
यीशु ने हमें आज्ञा दी कि हम उनको ग्रहण कर लें,
we pray for,
जिनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं,
at the time we pray,
जिस समय हम प्रार्थना कर ही रहे हैं,
without waiting.
बिना इंतजार किए
टू सी इट
कि उनको हम देख लें जो मांग रहे हैं
और फील इट
या उसको महसूस कर लें पहले.
एंड ऑन दिस कंडीशन
और इस शर्त पे
ही सेड यू शैल हैव देम
और इस शर्त पे उसने कहा जो कुछ तुम मांगो तुम्हें मिल जाएगा.
एंड दैट्स व्हाई सो मेनी पीपल कम टू चर्च एंड दे हैव thousands of unanswered prayers and they think why doesn't God hear my prayer.
और इसीलिए बहुत से लोग कलीसिया आते हैं और हजारों ऐसी अनसुनी प्रार्थनाएं हैं उनकी जिनके बारे में वो सोचते हैं कि प्रभु मेरी प्रार्थनाओं को क्यों नहीं सुनता.
The problem is not that God is not giving you things. The problem is you don't know how to receive it.
समस्या ये नहीं कि परमेश्वर आपको चीजें नहीं देता. समस्या है आपको उनको ग्रहण करना नहीं आता.
Amen. We have to learn how to receive things in the kingdom.
इसीलिए हमें सीखना है कि राज्य में हम चीजें कैसे ग्रहण करें.
Jesus said, whatsoever things you pray for, whatsoever things you desire.
यीशु ने कहा जिस किसी बारे में तुम प्रार्थना करो जो कुछ तुम चाहत करो.
When you pray,
जब प्रार्थना करो,
believe that you have received it.
ये मान लो कि तुम्हें वो मिल गया है.
Without waiting to see it,
बिना उसको देखे देखने का इंतजार किए,
touch it,
या उसको छुए बिना,
or feel it,
या उसको महसूस किए बिना,
and if you can do that,
और अगर ये कर सकते हो,
then he said you shall have them.
तो वो कहता है कि तुम्हें वो मिल जाएगा.
Amen. Kenneth Hagin uncle preached this verse for 50 years of his life.
Kenneth Hagin uncle अपने जीवन के 50 साल तक ये आयत सिखाते रहे.
There is so much of meat.
इसमें इतना ठोस भोजन है.
If you understand how to receive things from God.
अगर आप समझ जाएं परमेश्वर से कैसे चीजें लेनी हैं.
Amen. So, are you ready to hear something? I'm going to tell you something powerful.
मैं कुछ सामर्थ्य बताने वाला हूं कि आप तैयार हैं सुनने के लिए.
Keep your ears open.
अपने कानों को खुला रखें.
Okay, let's go to Genesis chapter 27 verses 28.
उत्पत्ति 27 उसके 28 व्याप पे हम जाएंगे.
So what is happening is Jacob has come to his father Isaac.
यहाँ पर क्या हो रहा है? याकूब अपने पिता इसाक के पास आया है.
To get the blessing.
ताकि वो उससे आशीषें पाले.
Okay.
ठीक है.
And now Isaac is beginning to bless him.
और इसाक अपने बेटे को अब आशीष देना शुरू करता है.
But Jacob.
लेकिन याकूब.
Tricked his father.
अपने पिता को धोखा देता है.
He was the younger one.
वो छोटा बेटा था.
And in Jewish culture,
और यहूदी रीति रिवाज
the first born gets the double portion.
जो पहला बेटा होता है उसको दुगना हिस्सा मिलता है.
When they divide the inheritance,
जब वो वसीयत करते हैं या जो संपत्ति बांटते हैं.
In Jewish culture, the first born son gets the double portion.
यहूदियों में पहला बेटा जो होता है उसको दुगना हिस्सा मिलता
है. Now Jacob is not first born.
अब याकूब पहला बेटा नहीं था.
Esau is the first born.
ईसा था जो पहला बेटा था.
But he wears hairy clothes and comes because Jacob, his eyes is there, they've grown dim.
लेकिन याकूब जो है वो जानवर की खाल पहनकर, जो बालों वाली खाल है वो पहनकर आता है, क्योंकि इसाक की देखने की शक्ति कम हो गई थी.
Now hear carefully.
अब ध्यान से सुनना.
Now Isaac is blessing Jacob.
अब इसाक याकूब को आशीष देता है.
Thinking he is Esau.
ये सोचते हुए कि ये ईसा है.
And he's saying in verse 28.
28 में आया.
Therefore may God give you of the dew of heaven.
इसलिए परमेश्वर तुझे आकाश की ओस दे.
Of the fatness of the earth.
और भूमि से उत्तम उपज दे.
And plenty of grain and wine.
और बहुत सा अनाज और नया दाख मधु दे.
Let people serve you.
लोग तेरी नौकरी करें.
And nations bow down to you.
और देशों के देश तेरे आगे घुटने टेकें.
Be master over your brethren.
अपने भाइयों पर तू मालिक ठहरना.
And let your mother's sons bow down to you.
और तेरी माँ के जो पुत्र हैं वो तेरे आगे घुटने टेकें.
Curse be everyone who curses you.
जो तुझे श्राप दे वो श्रापित हो.
And blessed be those who bless you.
और जो तुझे आशीष दे वो आशीषित हो.
Now it happened as soon as Isaac has finished blessing Jacob.
और अब ऐसा हुआ जैसे ही इसाक ने याकूब को आशीष देना समाप्त किया.
And Jacob had scarcely gone out from the presence of Isaac his father.
और याकूब अपने पिता इसाक की उपस्थिति से निकला ही था.
That Esau his brother came in from his hunting.
उसका जो बड़ा भाई ईसा है वो रास्ते में वापस आ गया शिकार करके.
He also had made savory food and brought it to his father and said to his father.
और ईसा ने भी अच्छा खाना बनाया था और अपने पिता के पास लेके आया और अपने पिता से कहा.
Let my father arise and eat of his son's game that your soul may bless me.
मेरे पिता उठ और उसमें से खा जो मैं तेरे लिए शिकार करके लाया हूं ताकि तेरा प्राण मुझे आशीष दे.
And his father Isaac said to him, "Who are you?"
और उसके पिता इसाक ने उससे पूछा, तू कौन है?
And he said, "I am your son, your firstborn, Esau."
और उसने जवाब दिया कि मैं तेरा पहला जन्मा बेटा हूँ, तेरा बड़ा बेटा इसाओ.
Then Isaac trembled exceedingly.
और लिखा है कि वहाँ पर इसाक घबरा कर थरथराने लगा.
Why is now Isaac trembling? We'll see
अब
later.
अब इसाक थरथरा क्यों रहा है?
And said, "Who? Where is the one who hunted game and brought it to me?"
और वो सवाल पूछता है कि फिर वो कौन था जो मेरे लिए शिकार करके लाया था, मुझे खाने को दिया था?
I ate all of it before you came.
उसमें से मैंने सब कुछ खा लिया तेरे आने से पहले ही.
And I have blessed him.
और मैंने उसको आशीष भी दे दी.
And indeed he shall be blessed.
और सच में वो आशीषित रहेगा.
When Esau heard the words of his father, he cried with an exceedingly great and bitter cry.
जब इसाओ ने अपने पिता के इन शब्दों को सुना वो फूट फूट कर रोने लगा.
That is the difference between our culture and the culture in the kingdom.
ये फर्क है हमारे कल्चर में और राज्य के कल्चर में.
We think words are just words.
हमें लगता है मुंह की बोली बातें ही तो हैं.
Why did Esau cry?
इसाओ रोने क्यों लगा फूट फूट कर?
He cried because of the words that his daddy spoke over his brother.
वो रोया उन शब्दों के कारण जो उसके पिता ने उसके छोटे भाई याकूब पर बोल दिए थे.
This is how much they believed in prayer.
इतना वो लोग प्रार्थना में विश्वास करते थे.
This is how much they believed in the words that came out from their mouth.
इतना वो लोग विश्वास करते थे मुंह से निकलने वाले शब्दों पर.
That's why
इसलिए
Isaac was trembling because he knew the words that have gone out from his mouth, they are going to work.
इसीलिए इसाक थरथरा रहा था क्योंकि वो जानता था जो बातें उसके मुंह से निकली हैं वो पूरी होंगी.
He knew
उसको पता था
that now Esau has to serve Jacob because of the blessing of a father.
उसको पता था कि अब ईसाव को याकूब की सेवा करनी पड़ेगी उसके पिता के शब्दों के मुताबिक.
What do you think what happens when we declare from here?
आपको क्या लगता है क्या होता है जब यहाँ से हम घोषणाएं करते हैं?
It's not just fancy words.
ये सिर्फ सुंदर बातें नहीं है कहने की.
It's not fancy words to get you excited.
आपको उत्साहित करने के लिए सुंदर बातें नहीं
है. Some people believe it, some people don't believe it.
कुछ लोग इनको मानते हैं कुछ लोग नहीं मानते हैं.
The people who believe it,
जो लोग मानते हैं, जो लोग मानते हैं इसका फल खाते हैं.
Amen. Now tell me.
अब मुझे बताओ.
Okay. Let us first continue and then I'll tell you something.
पहले मैं आगे देखते हैं फिर बताऊंगा.
Now when Isaac blessed Jacob, did Jacob feel anything?
अब जब इसाक ने याकूब को आशीष दी क्या याकूब ने कुछ भी महसूस किया?
But immediately after the word was released, Bible says that Jacob left his father's house. He knew he has got it.
लेकिन जैसे ही इसाक ने याकूब को आशीष दी लिखा है याकूब अपने पिता के घर को छोड़कर चला गया. उसको पता था मुझे मिल गया है जो मुझे चाहिए था.
He didn't feel tingly.
उसको चिलमिलाहट महसूस नहीं हुई.
He didn't feel anointing.
उसको अभिषेक महसूस नहीं हुआ.
You know, he didn't see goosebumps or angels.
उसके रोंगटे
और sky became pink.
स्वर्ग दूतों को नहीं देखा या आकाश का रंग नहीं बदला उसके लिए.
Nothing happened.
कुछ नहीं हुआ.
What happened?
क्या हुआ?
The words were spoken.
उसके ऊपर जो वचन बोले गए.
He believed it.
उसने उनको मान लिया.
And he said, done deal.
और बोला काम खत्म.
And exactly it happened.
और वैसा ही उसके साथ हुआ.
Now look this.
अब यहाँ देखो.
You know that it's the same words that made the earth. Bible says it's the words that made the earth.
Bible कहती है कि वचन ही है जिसके द्वारा भूमि की रचना हुई.
Bible says in Hebrews that by faith we understand that all the universe were framed through the word of God.
और इब्रानी 11 के मुताबिक हम देखते हैं कि कैसे विश्वास के द्वारा ही पूरे ब्रह्मांड की रचना की गई.
So many Christians cannot tap into blessing because they are waiting for any external feeling to believe.
बहुत सारे मसीही लोग उस आशीष में चल नहीं पाते क्योंकि वो इंतजार कर रहे हैं कि कुछ महसूस होगा, कुछ बाहरी रूप से महसूस होगा.
Oh God, give me a confirmation.
प्रभु जी मुझे इस बात का आश्वासन दो.
The only confirmation you need is it is written and if you believe it, it is done.
केवल एक ही आश्वासन आपको चाहिए कि लिखा है और अगर लिखा है तो होगा ही होगा.
You don't have to feel it.
आपको वो महसूस करना नहीं
है. You don't have to see a dream about it.
उसके बारे में सपना देखने की भी जरूरत नहीं
है. You don't have to feel hot, cold, tingly.
उसके लिए ठंडा गर्म या रोंगटे खड़े होने की जरूरत नहीं है.
Faith is beyond feelings.
विश्वास भावनाओं के पार है, उससे आगे है.
Jacob knew.
याकूब को पता.
Every word coming out from my father's mouth.
जो कुछ मेरे पिता के मुंह से निकला है वो जमीन पर नहीं गिरेगा खाली.
Guys, are you getting what I'm saying?
आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ?
He felt nothing.
उसने कुछ भी महसूस नहीं करा.
Even Esau felt nothing.
ईसाव को भी कुछ महसूस
नहीं. Then why was he crying so bitterly?
तो फिर ईसाव फूट फूट कर क्यों रो रहा था?
Because they knew the power of spoken words.
क्योंकि वो जानते थे मुंह से बोले गए वचन की क्या सामर्थ्य है.
You are the summary of words spoken over your life.
आप उन सारे शब्दों का जो आपके जीवन पर बोले गए उन सब शब्दों का निचोड़ हैं.
But the sad thing is,
लेकिन दुख की बात ये है,
majority of those words have been spoken by you.
उनमें से ज्यादातर शब्द आपके खुद के बोले गए हैं.
What do you speak over yourself?
आप अपने जीवन पे क्या बोलते हैं?
Words are powerful.
शब्द आपके मुंह से निकले हुए शब्द बहुत सामर्थी हैं.
It's the words that created the universe.
शब्दों के द्वारा वचन के द्वारा ही पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई.
It's not just words, it's the words.
केवल फजूल में बोली गई बातें नहीं लेकिन वो बातें हैं जो रचना करती हैं.
Amen? All right. Hallelujah. Are you getting what I'm saying? Yes. Every time a declaration has been made from here.
जब कभी यहाँ से एक घोषणा की गई
and you receive it by faith,
और आपने विश्वास से उसको ग्रहण किया,
you felt nothing,
आपको कुछ महसूस
you
नहीं
saw
हुआ,
nothing,
कुछ देखा नहीं,
no goosebump,
कोई रोंगटे खड़े
no
नहीं हुए,
heat cold,
कुछ ठंडा गर्म नहीं लगा,
but you believed it,
लेकिन आपने उनको मान लिया.
You know what happens?
पता है क्या हुआ?
That thing will happen in your life.
वो जो बोला गया आपके जीवन में पूरा होगा.
Amen? If what if we can have the attitude like Jacob?
क्या होगा अगर याकूब जैसी सोच विचार हम रखें?
Man, a word is spoken.
कि जो वचन मेरे लिए बोला गया है,
done deal.
खत्म हो गया वो.
I'm walking out of this door.
मैं यहाँ से निकल रहा हूँ.
Knowing it has been done.
ये जानता हूँ कि मेरे लिए वो हो गया है.
Amen. So I want to declare some things over your life.
इसलिए कुछ बातें हैं जिनकी मैं आपके जीवन पे घोषणा करना चाहता हूँ.
Amen. Hallelujah. Are you getting what I'm saying?
आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ?
Jacob was not different.
याकूब को अलग नहीं था.
Bible says as Isaac was the son of promise, so are we.
बाइबल कहती है जैसे इसाक वायदे की संतान था वैसे ही हम भी हैं.
Amen. In fact, we are in a better covenant.
और यहां तक कि हम उससे उत्तम वाचा में हैं.
Isaac was a servant. We are sons and daughters.
इसाक एक नौकर था लेकिन हम बेटे और बेटियां हैं.
Amen. Isaac did not have the Holy Spirit living inside of him. We have the Holy Spirit living inside of us.
Isaac ke andar pavitra atma nahi rehta tha, hamare andar pavitra atma rehta hai.
Isaac's tongue was not baptized with the fire of the Holy Spirit. Our tongue is baptized by the fire of the Holy Spirit.
Isaac ki jeeb ka baptisma pavitra atma ki aag se nahi kiya gaya tha, hamari jeeb ka baptisma pavitra atma ki aag se kiya gaya hai.
How much more if we start valuing what comes out from our mouth?
To kitna zyada agar hum apne vachnon ko apne muh se nikalne wale shabdon ko ahmiyat dene lag jaye.
Amen. See, the book of James, James gives a beautiful picture.
याकूब एक बहुत ही सुंदर तस्वीर देते हैं.
James says,
वो कहते हैं
that these huge ships, these massive ships,
के जो बड़े-बड़े जहाज हैं,
he says through a small rudder you can change the course of those ships.
वो कहते हैं एक छोटी सी पतवार से उसकी पूरी दिशा बदली जा सकती है.
And there he is giving an example of tongue.
और वहाँ पर वो जुबान का उदाहरण देते
हैं. He is comparing a rudder to your tongue.
वो पतवार की तुलना आपकी जीप से करते हैं.
You know these huge ships?
इतने बड़े-बड़े जहाज हैं.
There is a small rudder and through that they can change the course through a small rudder.
एक छोटा पहिया जैसा होता है जिससे उसके पूरे जहाज को मोड़ देते हैं.
If you are going in this direction,
अगर आप इस दिशा जा रहे हो,
and you don't like that your life is going in this direction,
और आपको पसंद नहीं है कि आपका जीवन इस दिशा जा
रहा है, all you have to do is,
तो बस इतना करना है,
change the rudder into the direction where you want it to go.
अपने मुंह के शब्दों को बदल दो उस दिशा के लिए जहां आप जाना चाहते हो.
Amen. And if you change your tongue to the direction where you want your life to go, you know what happens? Your life will start turning and going to the direction where you want it to go.
और अगर आपने अपने मुंह की जबान, अपने मुंह के शब्दों को बदल दिया उस दिशा के लिए जहां आप जाना चाहते हो, आपके जीवन की दिशा अपने आप बदलती चली जाएगी.
But the problem is, we keep saying those things which we do not want.
समस्या ये है कि हम वो बातें कहते रहते हैं जो हम नहीं चाहते हमारे साथ हों.
And God says those things which He wants.
लेकिन प्रभु वो बातें कहता है जो वो चाहता है कि हों.
Amen. We keep acknowledging the issues and problems around our life when he's saying, acknowledge my presence that lives inside of you. The one who lives in you is greater than the one who lives in the world.
हम उन दिक्कतों को, उन समस्याओं को बार-बार दोहराते रहते हैं, उनके बारे में बातें करके उनको बड़ा बनाते रहते हैं, जबकि वो कहता है कि मेरी उपस्थिति पर मन लगाओ, क्योंकि वो जो तुम्हारे अंदर रहता है सामर्थ्य है उससे जो दुनिया में है.
Amen. Many people think,
बहुत से लोग सोचते हैं,
that God is controlling the rudder and changing the direction of your life. That's not true.
कि उनके जीवन का पहिया परमेश्वर के हाथों में है, लेकिन ये सच नहीं है.
Oh God, why did you bring me here in the valley?
प्रभु जी मुझे खाई में क्यों ले आए?
Yeah, because your tongue was always pointed towards the valley.
हाँ, क्योंकि आपकी जुबान हमेशा खाई की ओर इशारा कर रही थी.
You,
आप
are leading your life.
अपने जीवन का उत्तर उसका मार्गदर्शन करते हैं.
Amen. That's why James, in the book of James, in the book of Proverbs, it says life and death are in the power of tongue.
इसीलिए नीति वचन की किताब कहती है जीवन और मृत्यु आपकी जीभ के वश में है.
If you speak life,
अगर आप जीवन की घोषणा करोगे,
you're going to see life.
अगर जीवन बोलोगे तो जीवन देखोगे.
If you speak death,
अगर मृत्यु बोलोगे,
you're going to see death.
तो मृत्यु देखोगे.
And let me tell you one thing.
और मैं आपको एक बात बता दूं.
Does not matter how much you pray and fast, bind the demons, go to mountain tops, apply oil, water, blah blah blah.
फर्क नहीं पड़ता कितना आप उपवास प्रार्थना करें, पहाड़ों पर जाएं, दुष्ट की शक्तियों को बांधे, पानी लगाएं, तेल डालें अपने ऊपर, क्या करें?
If your tongue,
अगर आपकी जुबान,
if you have not bridled your tongue,
अपनी जुबान पर अगर आपने लगाम नहीं लगाई है,
your life will be messed up.
तो आपके जीवन में खराब परिस्थिति आती रहेंगी.
Amen. Guys, are you getting what I'm saying? James is saying,
याकूब ये कह रहे हैं,
he's saying through your tongue you can control your entire body.
याकूब ये कह रहे हैं साधारण रूप से देखा जाए कि अपने जीव से अपने पूरे शरीर को आप नियंत्रित कर सकते हो.
You know, some people say, I cannot read the Bible.
कुछ लोग कहते हैं मैं बाइबल नहीं पढ़ सकता.
Brother, I've tried.
भाई मैंने कोशिश की है.
I cannot read the Bible.
मैं बाइबल नहीं पढ़ सकता.
I cannot read the Bible.
मैं बाइबल नहीं पढ़ सकता.
And their tongue, their ship is going to.
और उनकी जो जहाज है वो मुड़ता चला जाता.
And the more they say it, the more their ship goes.
और जितना कहते हैं उनका जहाज उतना उस दिशा में और जाता है. मैं बाइबल नहीं पढ़ सकता. मैं बाइबल नहीं पढ़ सकता.
And a point comes when their heart is completely convinced that they cannot read the Bible.
और एक समय ऐसा आता है जहां उनका दिल पूरी तरह इस बात में सहमत हो जाता है कि ये इंसान बाइबल नहीं पढ़ सकता.
Do you know our body is voice activated?
क्या आप जानते हैं हमारा शरीर आवाज ध्वनि से कार्यशील होता है?
Jesus spoke to mountains. Jesus spoke to trees. Jesus spoke to demons, spirit of deafness.
यीशु ने पहाड़ को आदेश दिया, उसने पेड़ को आदेश दिया, उसने यहां तक कि बहरेपन की आत्मा को भी आदेश दिया.
He spoke to things as if they are real people.
उसने चीजों से ऐसे बात की जैसे वो वास्तविक व्यक्ति हों.
So when you tell yourself, for example, I cannot read the Bible.
तो जब आप अपने आप को कुछ कहते हैं, मान लीजिए कि मैं बाइबल नहीं पढ़ सकता.
So you meet your friends.
तो आप अपने दोस्त से मिलते हैं.
अरे यार तुम कैसे कर लेते हो, मेरे से तो पढ़ी नहीं जाती, पढ़ी नहीं जाती. The more you say it, a point comes wherein you open the Bible, and because your heart knows that you cannot read the Bible, the moment you'll open it, your body will go into shutdown mode and you'll be sleeping.
तो जितना ज़्यादा आप ये कहेंगे, उतना आपका दिल इस बात में सहमत हो जाएगा, और जैसे ही आपने बाइबल खोली, आपके दिल को पता है कि आप बाइबल नहीं पढ़ सकते हैं, वो आपके शरीर को बंद होने के लिए आदेश देगा और आपको नींद आ जाएगी.
But Bible is simply saying, the word is saying, if you change your tongue, you can control your entire body.
बाइबल साधारण रूप से कहती है अगर अपनी जुबान को बदल दिया अपने पूरे शरीर को बदल दोगे.
What if you close your door when nobody is there, lift up your hands and say, I am a lover of the word of God. I love the word of God. I can read the Bible as much as I can read the Bible. I am a lover of the word of God.
क्या होगा जब आप अकेले में हो तो अपने घर अपने कमरे का दरवाजा बंद करो और बोलो मैं परमेश्वर के वचन का प्रेमी हूँ, जितना चाहूँ उसका वचन मैं पढ़ सकता हूँ.
Yes. Immediately, maybe you won't see anything.
हो सकता है उसी समय कोई परिणाम ना दिखे.
Slowly, what will start to happen is.
लेकिन धीरे-धीरे क्या होने लगेगा?
The word will start drawing you.
वचन आपको अपनी ओर आकर्षित करने लग जाएगा.
You start feeling this hunger, man. I have to go home and I have to open the word. And when I'll open the word, God is going to speak to me.
आपको वो भूख महसूस होने लगेगी कि मैं कब घर जाऊं ताकि मैं वचन खोलूं और परमेश्वर मुझसे बात करे.
What is happening?
क्या हो रहा है?
You are changing the course of your life with your tongue.
आप अपने जीवन की दिशा बदल रहे हैं अपनी जीभ को.
You are changing this huge ship which you think cannot be controlled. It can be controlled through your tongue.
इतने बड़े जहाज को आप नियंत्रित कर रहे हैं जो आपको लगता है नियंत्रित नहीं किया जा सकता आपकी छोटी जुबान के द्वारा.
Amen. For example, you are not able to get up early in the morning.
उदाहरण के लिए अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते.
मेरे से उठा ही नहीं जाता. Tried. होता ही नहीं है. Well, what if you start saying, you take a scripture, the Bible says, early morning, Jesus, he awoke and he went out to pray. And you start saying, Lord, I want to get up early in the morning. Father, thank you so much that I will get up early in the morning. I am an early riser. You start changing the confessions of your mouth. And you know what happened? You know what will happen? It's when everybody is sleeping, you're wide awake.
क्या होगा अगर आप वचन को यहाँ पर अपने जीवन में बोलना शुरू करें, जैसे लिखा है कि यीशु जल्दी उठ करके प्रार्थना में समय बिताता और आप कहें पिता धन्यवाद कि मैं जल्दी उठने वालों में से हूँ, प्रभु मैं आपके साथ सुबह समय बिताने वालों में से हूँ, और अपने आप आपके जीवन को आप बदलते चले जाएंगे, आपकी नींद जब सब सो रहे होंगे आपकी नींद खुल जाएगी.
ओके, सो सेकंड सैमुएल 24,
दूसरा शमूएल उसका 24,
वी विल रीड फ्रॉम वर्सेस 18 टू 24,
18 से 24 तक.
बट लेट मी टेल यू व्हाट इज हैपनिंग हियर. So God tells David that you need to go to Arauna of Jebusite and tell him that you want to build an altar at his place.
और परमेश्वर दाऊद से बात करते हैं, कहते हैं कि तुझे जो जेबुसाइट का अरुणा है उसके पास जाना और उसे कहना है कि परमेश्वर के लिए मैं एक वेदी बनाना चाहता हूँ.
Right? Next verse. And Gad came that day to David and said to him, "Go up, erect an altar to the Lord on the threshing floor of Arauna the Jebusite."
और उस यहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने उस दाऊद से कहा कि जा और जो अरुणा है जेबुसाइट का उसके उसकी भूमि पर एक वेदी को बना.
So David, according to the word of Gad, went up as the Lord commanded.
So गाद के वचन के अनुसार दाऊद वहां गया जैसा उसको आज्ञा दी गई थी.
Next verse.
अगली आयत.
Now Arauna looked and saw the king and his servants coming towards him. So Arauna went out and bowed before the king with his face to the ground.
और अरौना ने दाऊद और उसके कर्मचारियों को अपनी ओर आते हुए देखा, तब उसने निकलकर भूमि पर मुंह के बल गिरकर राजा को दंडवत किया.
See, he immediately recognizes that king David has come.
और उसने उसी समय पहचान लिया कि राजा दाऊद उसकी ओर आ रहा है.
Arauna said, "Why has my lord the king come to his servant?" And David said, "To buy the threshing floor from you."
और उसने कहा कि मेरा राजा मेरी ओर क्यों आ रहा है? उसने कहा ताकि मैं तुझसे ये खलिहान जो है वो खरीद लूं.
Okay, to build an altar to the Lord that the plague may be withdrawn from the people.
ताकि मैं प्रभु के लिए वहाँ एक वेदी बनाऊं ताकि जो बीमारी है वो लोगों से हट जाए.
Now, till now it's awesome.
अभी तक अच्छी है.
When I heard it, man, it's David's. You know, that's why God doesn't see our outer appearance.
तभी जब मैं ये देखता तो मैं हैरान था कि परमेश्वर हमें हमारे बाहरी रूप से नहीं देखता.
So much of Christianity is about what kind of clothes you wear.
बहुत सारी मसीहत का लेना देना
है,
कैसे कपड़े पहनते हो,
बाल कैसे हैं, ये
ज्वेलरी पहनते नहीं पहनते हो, बाल कैसे बनाते हो नहीं बनाते हो.
But the Bible says that God does not look at the outward appearance, he looks at the heart.
लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर बाहरी रूप को नहीं देखता, वो दिल को देखता है.
Now I want to show you something, David's heart here, which really touched me.
मैं आपको यहाँ पर दाऊद का दिल दिखाना चाहता हूँ जिसने मुझे छू लिया.
Okay. Next verse.
अगली आयत.
Now Arauna said to David, "Let my lord the king take and offer up whatever seems good to him."
और अरुणा ने दाऊद से कहा कि मेरा जो प्रभु है, मेरा राजा, जो उसको समझ में आए, जो उसको पसंद आए, वो ले ले.
Look, here are oxen for burnt sacrifice and threshing implements and the yokes of the oxen for wood.
यहाँ पर बैले हैं जो बलि देने के लिए और जो कुछ उसको चाहिए वो रखा है लकड़ियों के साथ में.
What Arauna is saying is,
और जो अरुणा कह रहा है वो ये है,
that if you need it for God,
कि अगर आपको परमेश्वर के लिए चाहिए,
take it,
तो ले लो मुफ्त में.
Take it.
ले
take
लो.
My oxen, take my flow.
मेरी बैल ले लो, जो जगह है वो ले लो, लकड़ियाँ ले लो.
Now if we were in place of David,
अगर हम लोग दाऊद की जगह पे होते,
we would say, "Hallelujah, God has heard our prayer."
तो हम कहते हैं हालेलुया, प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली है.
I went to that guy.
मैं उस इंसान के पास गया.
And he said, "You can take my place for free."
और उसने कहा मुफ्त में ले लो मेरी जगह.
Free.
मुफ्त में ले लो, मुफ्त में.
And Indians love free.
और भारतीयों को मुफ्त में मिलने वाली चीजें बहुत पसंद हैं.
That's why what they do is in shopping malls.
इसीलिए shopping malls में क्या करते हैं?
They'll take expired products, expired chips, put it in three, wrap it around, say with one, you'll get two free. And there are people. Stampede inside the mall to get those.
जिन चीजों की तारीख निकल चुकी है, जो खराब हो चुकी हैं, उनको तीन को टेप लगा देते हैं, बोलते हैं दो के साथ एक मुफ्त ले जाओ, और भीड़ लगी है उसको लेने के लिए.
Because we love free.
क्योंकि हमें मुफ्त की चीजें पसंद है बहुत.
But look what David says.
और देखो दाऊद क्या कहता है.
All these, O King Arauna has given to the king. And Arauna said to the king, "May the Lord your God accept you." He says, "Take, man, whatever you want. Take it from me."
और अरुणा कहता है कि जो कुछ तुझे चाहिए वो ले ले, क्योंकि प्रभु ने तुझे वो दे दिया है और प्रभु तुझे ग्रहण करे.
And when I read that, I was like, "Lord, I want to have a heart like David. Look at his heart."
और जब मैंने ये पढ़ा, मैंने कहा मुझे इस दाऊद के जैसा दिल चाहिए. प्रभु उसका दिल देखें आप.
Then the king said to Arauna, "No, but I will surely buy it from you for a price."
और दाऊद ने उसको उत्तर दिया, नहीं, पर मैं तुझे दाम दे करके तुझसे जो लूंगा खरीदूंगा.
Now hear this. "Nor will I offer burnt offerings to the Lord my God with that which costs me nothing."
और दाऊद कहता है कि नहीं, मैं जो कुछ तुझसे लूंगा उसका दाम देकर ही तुझसे उसको खरीदूंगा, कि ऐसा ना हो कि मैं अपने अपने परमेश्वर को मुफ्त की दी हुई बलि चढ़ाऊं.
He's saying, "I would not offer to God which costs me nothing.
वो कह रहा है मैं प्रभु को वो नहीं चढ़ाऊंगा जिसकी मैंने कीमत ना चुकाई हो.
Some people never buy the Bible because they are waiting when the church will give a free Bible to them.
कुछ लोग कभी अपने बाइबल नहीं खरीदते क्योंकि इंतजार करते हैं कलीसिया उनको कब फ्री की बाइबल देगा.
Telling you the truth.
सच कह रहा हूं.
Are you hearing what I'm saying, church?
आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा
हूं? Understand what I'm saying.
समझिए मैं क्या कह रहा हूं.
Do you offer God that thing which does not cost? Some people come late all the time to church because they don't want to miss their sleep.
कुछ लोग हमेशा इसीलिए कलीसिया देर से आते हैं क्योंकि वो अपनी नींद बर्बाद नहीं करना चाहते.
Can we offer God something which costs us something?
क्या हम परमेश्वर को कुछ ऐसा दे सकते हैं बलिदान में जिसकी हमने कीमत चुकाई हो?
Your time, your talent, your money.
अपना समय, अपनी योग्यता, अपना पैसा.
Some people are so comfortable in the church as long as it does not cost them anything. The moment it costs them anything, they say, "Man, look, let's look out for another church."
कुछ लोग कलीसिया में तब तक खुश हैं जब तक उनको कोई दाम ना चुकाना पड़े. जैसे ही उनके दाम चुकाने की बारी है तो बोलते हैं दूसरे कलीसिया ढूंढ लेते हैं यार.
Some people will never go to mission trips unless somebody will sponsor them.
कुछ लोग कभी भी सेवकाई के लिए तब तक नहीं जाएंगे जब तक कोई और उनके लिए पैसे ना दे.
What am I trying to tell you?
मैं क्या कहना चाह रहा हूँ?
You know where you put your money goes where those things which you value.
आपका पैसा वहाँ लगता है जहाँ आपको लगता है कि इस बात की कोई कीमत है.
So many of young people here, you have iPhone XS cost more than a lakh. Why? Because you find that thing valuable.
बहुत सारे जवान लोग हैं यहाँ पर जिनके पास iPhone XS है जिसकी कीमत 1 लाख से ऊपर है. इसलिए आपने वो 1 लाख दिया क्योंकि आपको लगा कि इस फोन की कीमत जो है वो सही है.
You are okay to pay more than a lakh for a phone.
1 लाख से ऊपर फोन के लिए दे दिया आपने.
A phone also comes for 3-4 thousand.
3-4 हज़ार के फोन भी आते हैं.
5,000, 6,000, 8,000, 10,000. But because you found that phone valuable,
लेकिन क्योंकि आपको वो फोन कीमती लगा,
you were able to give that kind of money.
आपने उस तरह की कीमत चुकाई.
Where your money goes speaks a lot about those things which you value.
जहां आपका पैसा जाता है, उन बातों के बारे में बहुत जोर से बात करता है जिनको आप अहमियत देते हैं.
Are you getting what I'm saying, church?
आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ?
Not saying this to condemn you. When I read that, man, it was like bam.
मैं किसी पे दोष लगाने के लिए नहीं कह रहा हूँ. मैं इसलिए बता रहा हूँ जब मैंने ये पढ़ा तो इस बात ने मेरे दिल को छू लिया.
I was like, wow, man, what is the heart that David has?
क्या दिल था दाऊद का?
He's saying, I would not offer to God anything that costed me nothing.
और वो कहता है मैं कुछ भी ऐसा परमेश्वर को नहीं दूंगा बलिदान में भेंट में जिसकी मैंने कीमत नहीं चुकाई.
Can we get up early on Sundays? Maybe it will cost us 1-2 hours of sleep, but can we offer that to God as a sacrifice?
क्या हम संडे को जल्दी उठ सकते हैं? शायद हो सके 1-2 घंटे की नींद हमारी खराब हो जाए, लेकिन क्या वो बलिदान के रूप में प्रभु को हम दे सकते हैं?
Can we put our time, energy, effort, money into the kingdom, knowing that this is the greatest value that we can ever get?
क्या अपना समय, अपना पैसा, अपनी मेहनत हम राज्य में लगा सकते हैं, जानते हुए कि ये सबसे कीमती निवेश है जो हम कभी कर पाएंगे?
Amen. And that's why for me, I want to tell you, it's very easy for me to know who is a lover of God. I can be with them and I can see where their money goes. And I know what they can spend their money on is what they love.
इसीलिए मेरे लिए बताना बहुत आसान है कि कौन परमेश्वर के प्रेमी है, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कौन अपना पैसा कहाँ लगाता है. जहाँ कोई अपना पैसा लगाता है वो उसी का प्रेमी है.
How do you think Paul was going to nations?
आपको क्या लगता है कि पॉलस कैसे देशों देशों में जा रहा था?
Do you think he was waiting for sponsors?
आपको लगता है वो स्पॉन्सर्स के लिए इंतजार करता था?
Many times when we go to preach, we pay for our flight, we pray for our hotel, and then all more than that, we give them an offering and come back.
ज़्यादातर जब हम लोग प्रचार करने के लिए जाते हैं, तो अपनी flight खुद करते हैं, अपना hotel खुद book करते हैं, और जहाँ जाते हैं, उनको हम भेंट देके आते हैं वापस.
Why?
क्यों?
Because if we get an sponsor or not, man, we have to preach the gospel.
क्योंकि अच्छा sponsor मिले ना मिले, हमें तो सुसमाचार बताना है.
Amen. But can we put our money into the kingdom? Can we put our time into the kingdom? Can we offer God which costs us something?
क्या अपना समय, अपना पैसा, अपनी मेहनत हम राज्य में लगा सकते हैं जिसकी हमें कुछ कीमत देनी पड़े?
So I was saying, if you know that your life is not going in the right direction, that is because your tongue is in the wrong place.
मैं ये कह रहा था, अगर आप जानते हैं कि आपके जीवन, आपका जीवन सही दिशा में नहीं जा रहा, वो इसलिए क्योंकि आपकी जुबान गलत दिशा में जा रही है.
You all are eating the fruit of your lips, whether you believe it or you don't believe it.
आप में से हर कोई अपने ही मुंह के शब्दों का फल खा रहा है, चाहे आप माने इस बात को या ना माने.
And it's not what you post on Facebook, it's what you say to yourself and when you're alone.
और जो आप Facebook पर पोस्ट करते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो अपने आप से बोलते हो जब अकेले हो उससे फर्क पड़ेगा.
Amen. All right. So let's open your Bibles to Luke chapter 5 verses 5.
लूका 5 उसके 5 पर अपनी बाइबल खोल लें.
So Peter has toiled all night and he caught no fish.
अब पतरस ने रात भर मेहनत की है और कोई मछली हाथ नहीं लगी.
Luke 5:5. But Simon answered and said to him, Master, we have toiled all night and caught nothing.
और शिमोन ने उत्तर दिया, स्वामी हमने रात भर मेहनत की है लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा.
Nevertheless, at your word,
तो भी क्योंकि तू कहता है,
I will put down the net.
मैं जाल को डालूंगा.
The word there is rema.
और जो शब्द वहां लिखा है वो है रेमा.
Spoken word.
जो बोला गया शब्द है.
It's when the word speaks to you.
वो तब है जब वचन आपसे बात करता है.
Let me tell you the best way to read the Bible.
मैं आपको सबसे अच्छा तरीका बताना चाहता हूँ बाइबल पढ़ने का.
You want to know that?
जानना चाहते हो?
Best way.
सबसे अच्छा तरीका.
There is nothing can be better than that.
इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है बाइबल
पढ़ने का. You don't need Greek Hebrew concordance.
आपको इब्रानी यूनानी भाषा सीखने की जरूरत
नहीं है. You don't need to be a super PhD DhD.
आपको ज्ञानवान होने की आवश्यकता नहीं है, पढ़े लिखे होने की आवश्यकता नहीं ज्यादा.
Read the Bible till he speaks.
बाइबल तब तक पढ़ें जब तक वो आपसे बात ना कर ले.
If you keep reading it,
अगर बाइबल पढ़ते रहोगे,
the written word will take you to rhema, to the spoken word.
वो लिखित वचन आपको जीवित वचन यानी कि बोले हुए वचन पर ले आएगा.
When you're reading the word,
जब वचन पढ़ो,
one scripture will get up and will hit you, bam, man. You know that that is the scripture for you.
तो पढ़ते पढ़ते एक आयत बाहर आकर आपसे बात करने लगेगी और आपको पता होगा कि ये आयत आपके लिए है.
Amen. Naturally.
स्वाभाविक रूप से
पीटर
पतरस
इज अ ट्रेन फिशरमैन
प्रशिक्षित मछली पकड़ने वाला था.
जीसस इज अ कारपेंटर
यीशु एक बढ़ई था लकड़ी का काम करने
वाला. एंड अ कारपेंटर इज टेलिंग अ फिशरमैन हाउ टू कैच अ फिश
और एक बढ़ई मछुआरे को बता रहा है कि मछली कैसे पकड़ी जाती है.
बट पीटर सेड लेकिन योर वर्ड आई एम गोना डू दैट.
लेकिन पतरस ने जवाब दिया कि क्योंकि तू कह रहा है मैं ऐसा करूंगा.
It's, you know, coming out of your crisis is very easy.
आप जानते हैं अपनी दुविधा से बाहर निकलना बहुत आसान है.
Some people are in crisis for years and that is not God's will for you.
कुछ लोग सालों साल दुविधा में पड़े रहते हैं और परमेश्वर की ये इच्छा नहीं है आपके लिए.
In a crisis comes a prophetic instruction.
क्योंकि दुविधा के साथ एक भविष्यवाणी की निर्देश आता है.
Guys, are you getting what I'm saying? God told Peter. Jesus told Peter, cast a net on the right side.
यीशु ने पतरस से कहा, आपने जाल को दाहिनी ओर डाल.
And he did that.
और उसने ऐसा किया.
And caught so many fish.
और बहुत सारी मछलियां पकड़ी.
There are so many times when God wants to give you prophetic instruction, but we are not hearing the rhema of God.
कई बार ऐसा होता है जब परमेश्वर आपको भविष्यवाणी का निर्देश देना चाहता है, लेकिन हम उसको सुनते नहीं हैं. वो क्या कह रहा है?
You know why?
पता है क्यों?
Because of condemnation in the heart.
क्योंकि हमारे दिल में दोष होता है.
Because many I have not seen people get filled of the Holy Spirit. Who were in their pity party?
मैंने उन लोगों को पवित्र आत्मा से भरते हुए नहीं देखा जो अपने दोष में डूबे हुए थे.
They say, "Oh man, we are not worthy. We are."
वो कहते हैं कि हम लायक नहीं हैं, हम इस योग्य नहीं हैं.
How can God love me?
परमेश्वर मुझसे प्यार कैसे कर सकता है?
And God says,
और प्रभु कहता है,
that we should come into His presence boldly.
कि हम उसकी उपस्थिति में हिम्मत करके आएं.
Do you know that the access to God's throne? Is boldness.
क्या आप जानते हैं परमेश्वर के सिंहासन के आगे आने का एक ही तरीका है हिम्मत के साथ.
That means when you pray,
इसका मतलब जब आप प्रार्थना करो,
your prayer should be bold.
आपकी प्रार्थना हिम्मत वाली हो.
God doesn't answer beggars. He answers sons and daughters.
परमेश्वर भिखारियों को जवाब नहीं देता, वो बेटों और बेटियों को जवाब देता है.
Amen. Why should God hear you? Because you are a son, you are a daughter.
परमेश्वर क्यों आपको सुने? क्योंकि आप उसके बेटे हो, उसकी बेटी हो.
And the Bible says, go boldly before God's presence.
और बाइबल कहती है, हिम्मत करके उसके उपस्थिति में आ जाओ.
But some people cannot walk in faith because of condemnation.
लेकिन कुछ लोग विश्वास में नहीं चल सकते क्योंकि उनके दिल में दोष भावना है.
Because all the time they are looking at themselves and they see, man, I'm not perfect.
क्योंकि सारा समय वो अपना जीवन देखते हैं और कहते हैं कि मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं सिद्ध नहीं जीता.
Let me tell you, nobody is.
मैं कुछ बताना चाहता हूँ, कोई सिद्ध नहीं जीता.
Amen. Bible says, what the law could not do, God did by sending His own Son.
Bible कहती है जो व्यवस्था ना कर पाई परमेश्वर ने कर दिया अपने खुद के बेटे को भेजकर.
And as I was sharing about a Jewish tradition that the firstborn gets double portion.
और जैसा मैं सिखा रहा था यहूदी रीति रिवाज के मुताबिक जो पहला जन्मा बच्चा बेटा होता है उसको दुगना हिस्सा मिलता है बाकी बच्चों से.
And the Bible says Jesus is the firstborn over all creation.
और बाइबल कहती है यीशु पहला जन्मा है सारी सृष्टि के ऊपर.
And the Bible says that we are heirs of God and joint heirs with Christ Jesus. That means whatever blessing Jesus got, we got it.
और बाइबल कहती है कि हम परमेश्वर के वारिस और मसीह यीशु के साथ संगी वारिस हैं. मतलब जो कुछ आशीष यीशु को मिली उसमें हमारा भी हिस्सा है.
Amen. Do you believe it?
क्या आप ये मानते हो?
Jacob believed it and I'm sure he would have. I don't think he would be going to his, out of his father. He'll be like.
और याकूब ने इस बात को मान लिया. मुझे नहीं लगता अपने पिता के घर से जब निकला तो निराश था, लेकिन वो हिम्मत कर कर निकला.
He was excited.
वो उत्साहित था.
What did he had that time?
क्या था उसके हाथ में?
Nothing,
कुछ नहीं.
But the spoken word.
लेकिन वो बोला गया वचन वो साथ लेकर.
Nothing but the spoken word.
कुछ भी नहीं लेकिन वो बोला हुआ वचन वो साथ लेकर.
And when you are reading the Bible.
और जब आप बाइबल पढ़ो.
And you are attentive to his voice.
और उसकी आवाज पर आपका ध्यान हो.
And God speaks.
और परमेश्वर बात करे.
You know, when I came into ministry, I've shared this. This is the power of Rhema.
जब मैं सेवकाई में आया और ये सामर्थ्य है बोले हुए वचन की.
God spoke to me.
परमेश्वर ने मुझसे बात की.
And he said,
और कहा,
You will never lack.
तू कभी कमी को नहीं देखेगा.
I believed it. I said, Thank God, I'm never gonna lack. And it's been years and years, and I don't know what lack is.
मैंने उस बात को मान लिया और सालों साल बीत गए मुझे कमी नहीं पता क्या होती है.
Amen. Because he spoke it.
क्योंकि उसने बोला.
And I believed it.
और मैंने मान लिया.
Amen? Amen. I didn't think how, when, where, but if, then.
मैंने नहीं सोचा कैसे क्यों कहां कब.
Man, he has said it.
उसने कहा कह दिया है.
In the same way, one day he spoke to me.
वैसे उसने मुझे एक दिन बात की.
He said accident.
और कहा कि
calamity.
दुविधा.
And sudden death.
और अचानक मौत अकस्मात मृत्यु.
You will have no portion in these.
उनका तेरे जीवन में कोई लेना देना नहीं होगा. मैंने
ग्रहण कर लिया. And that's what I declare over you guys.
और यही मैं आपके ऊपर घोषणा करता हूं.
Amen. If you believe it,
अगर
that is what will happen in your life.
तो यही आपके जीवन का हिस्सा है. आपके जीवन में इन सब बातों का कोई लेना नहीं होगा.
So I decree and I declare.
तो मैं इस बात की घोषणा करता हूँ.
That you will tap into the same grace as this ministry got into.
कि आप उसी अनुग्रह में जीने लग जाएंगे जो इस सेवकाई के ऊपर परमेश्वर ने रखी है.
And I release that grace of no lack over your lives in the name of Jesus.
और मैं उस अनुग्रह को जिसमें कोई कमी नहीं है किसी बात किसी अच्छी बात की कमी नहीं है आपके जीवन पे खोल देता
हूं. I declare no accident.
मैं घोषणा करता हूं कि कोई दुर्घटना आपके साथ
no
नहीं होगी.
sickness,
कोई बीमारी आपके जीवन
no
पे नहीं आएगी.
sudden death,
कोई अकस्मात मृत्यु आपके जीवन पे नहीं आएगी.
will be your portion.
वो आपका हिस्सा नहीं होंगे.
But your portion,
लेकिन आपका हिस्सा
will be divine health.
अलौकिक स्वास्थ्य होगा.
will be prosperity.
समृद्धि होगी.
Will be favor of God.
परमेश्वर की तरफदारी होगी.
And God will satisfy you with a long and healthy life.
और परमेश्वर आपको एक लंबे स्वस्थ जीवन से आशीषित करेगा.
Amen. All right, you all can be seated.
आप सब बैठ सकते हैं.
What's a long life?
क्या है लंबा जीवन?
What's the sign of a long life?
एक लंबे जीवन का क्या चिन्ह है?
Well, he said, I'm gonna bless you with a long life. And I'm going to satisfy you with a long life. If you're 80 and you're not satisfied, go on.
उसने कहा कि मैं तुझे एक लंबे जीवन के साथ तृप्त करूंगा. अगर आप 80 हो गए हैं लेकिन अपने जीवन से तृप्त नहीं हुए तो जीते रहे.
Amen. I always say this.
मैं हमेशा ये कहता हूं.
On hospital bed with tubes all over your body, this is not the way to go home.
कि घर जाने का ये तरीका नहीं है कि हम अस्पताल में हो शरीर में ट्यूब लगी हो.
That's not the way, man. Let's read in the Bible how David went, how the saints of God went.
हम बाइबल में पढ़ते हैं कैसे दाऊद और परमेश्वर के संत घर गए.
They were satisfied.
उनका जीवन तृप्त हो गया. वो जीवन जीकर तृप्त हो गए.
They called all their children.
अपने सारे बच्चों को बुला दिया.
They blessed them.
उन सबको आशीष दी.
They closed their eyes.
अपनी आंखें बंद की.
And they were in the presence.
और घर चले गए.
Wow, that's the way to go.
ये तरीका है वापस घर जाने का.
Amen.
Amen.
No tubes for FLJ people.
इस कलीसिया के लोगों के लिए ट्यूब्स नहीं है.
No surgeries for
कोई सर्जरी नहीं.
In the name of Jesus.
यीशु के नाम में.
I declare that any surgery that is appointed for you is cancelled today in the name of
Jesus. मैं ये घोषणा करता हूं कि किसी के लिए भी अगर कोई सर्जरी रखी गई हो तो वो रद्द की जाती है आज यीशु के नाम में.
Amen. Any person who has cancer cells growing in their body. From today, they are destroyed in the name of Jesus.
कोई भी व्यक्ति अगर किसी के शरीर में कैंसर सेल्स बढ़ रहे थे तो आज ही वो नाश होते हैं यीशु के नाम में.
Amen. Guys, if you believe the spoken word, that's so powerful.
अगर आप बोले गए शब्द को मान ले तो ये बहुत सामर्थ्य है.
Amen. That's why Bible says this gospel was preached to Israelites, but because they did not mix faith in it. It didn't profit them.
इसीलिए बाइबल कहती है कि ये सुसमाचार इज़राइलियों को भी सुनाया गया लेकिन उन्होंने उसमें विश्वास नहीं मिलाया इसीलिए उनको कोई फायदा नहीं हुआ.
Amen. Faith is not that it is not there but because you keep saying it, it will be there. That's not faith. That's faking it. We are not faking it.
विश्वास ये नहीं है कि अभी तो नहीं है लेकिन बोलते रहो तो आ ही जाएगा धीरे धीरे करके. वो विश्वास नहीं है, वो ढोंग करना.
We don't get blessed because we keep saying we are blessed. Because we are blessed, that's why we say we are blessed.
हम ये बोल के कि हम आशीषित हैं, आशीषित नहीं होते. हम आशीषित हैं इसीलिए ये बोलते हैं.
Because the Bible already says that we have been blessed with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ Jesus.
क्योंकि बाइबल पहले से कह चुकी है कि हम हर एक आशीष से आशीषित किए जा चुके हैं यीशु में.
We don't get healed because we keep saying by the stripes of Jesus I'm healed.
हम
we speak it because the Bible says by His stripes we were healed. It's a done deal.
हम इसलिए चंगे नहीं होते क्योंकि हम बार बार बोलते हैं कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए लेकिन क्योंकि लिखा है कि हम चंगे किए जा चुके हैं इसीलिए हम बोलते हैं.
So many people are in the ditch because they have not heard the rhema.
बहुत से लोग गड्ढे में इसीलिए हैं क्योंकि उन्होंने आवाज को नहीं सुना परमेश्वर की.
It can come. God can speak directly to you or he can speak through his people.
वो सीधे आपसे बात कर सकता है, अपने लोगों के द्वारा आपसे बात कर सकता है.
But you believe it, you receive that word, man, it becomes real.
लेकिन आप उसको मान ले, ग्रहण कर ले, वो आपका बन जाए.
Naaman, you know that commander, he had leprosy all over his body. And he gets a prophetical instruction. He says, go into the Jordan River, dip 7 times.
नेमान जो सेना का अधिकारी था उसको ये निर्देश मिला कि वो जाए और यर्दन नदी में 7 बार गोते लगाए.
What would have happened if Naaman would have said, you know what, today, you know what, Elisha भैया, today I have a meeting, I'll come here next Monday, then I'll do it.
क्या होता अगर नेमान कहता कि मेरी अभी मीटिंग है, मैं अगले सोमवार आ जाऊंगा, तब कर लेंगे जो कह रहे हो.
A delayed carefully.
A
delayed obedience is disobedience.
देरी से अगर बात मानी गई तो वो अनाज्ञाकारिता होती है.
A delayed obedience is disobedience.
एक बोली गई आज्ञा को देरी से पूरा करना अनाज्ञाकारिता के बराबर है.
Amen. If you tell your son, I am so thirsty, can you bring a glass of water for me?
अगर आप अपने बेटे से कहें मुझे बहुत प्यास लगी है, गिलास पानी पिला दो.
I say, I'm busy.
और बोले मैं बिजी हूँ.
And then he comes after a month.
और एक महीने बाद आता है.
मम्मी, water.
पानी.
You had asked for a water 1 month back.
आपने एक महीने पहले पानी मांगा.
No, you don't want it.
आपको
That's what the Bible says.
यही है जो बाइबल कहती है.
Seed time and harvest. There is a time appointed by God. So whenever God gives you a rhema, do it.
इसीलिए बाइबल कहती है कि बीज बोने का समय है. जब परमेश्वर आपको कुछ कहे करने के लिए, जब वो आपसे बात करे तो उसको करे जो कहता है.
Amen. Let me tell you, there's a like what I practice, try to practice. I am not saying that I have practiced it all the time, but I try to practice. It's a 10-second Holy Spirit rule. If the Spirit of God tells you to do something, do it immediately. If you don't do it, you won't do it.
जो मैं करता हूँ वो ये है, 10-second rule है, मैंने अपने लिए बनाया है कि जो पवित्र आत्मा मुझे करने के लिए कहता है उसको मैं 10 second के अंदर पूरा करता हूँ. अगर 10 second में नहीं किया तो उसके बाद नहीं करूंगा.
Jesus tells Peter to cast his net on the right side. What if Peter would have said, Jesus, you know what? Let's try this next month.
और यीशु ने पतरस से कहा कि अपना जाल दाहिनी ओर डाल, और अगर पतरस कहता कि यीशु अगले महीने करके देखेंगे.
Because today,
क्योंकि आज
all my friends are meeting for barbecue at Jerusalem.
मेरे सारे दोस्त जेरूसलम में मिल रहे हैं, barbecue night है.
And I've already given them time.
और मैंने पहले से time दे
रखा. So I'm sorry, Jesus.
तो माफ करना.
Let's try it next month.
अगले महीने करेंगे.
No, man. When a prophetic and if you are in crisis,
और अगर आप दुविधा में हैं किसी,
mark my words, a rhema is coming to you.
मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिए, आपके लिए परमेश्वर की ओर से आवाज आ रही है.
Amen.
वो वचन आता
है. The spoken word is coming to you, and that rhema will not let you be in that ditch.
वो बोला गया जो वचन है आपको उस गड्ढे में उस दुविधा में रहने नहीं देगा.
God will give you a prophetical instruction.
परमेश्वर आपको भविष्यवाणी का निर्देश देगा.
And when you hear it,
और जब उसको सुनो,
just do it.
तो पूरा करो.
Amen. Guys, are you getting what I'm saying?
Yes.
The only way you can walk in faith is knowing that the righteousness you have is not your own righteousness.
केवल एक तरीका है विश्वास में जीने का, वो ये जानना है कि जो धार्मिकता आपको दी गई है वो आपने कमाई नहीं है.
You know, someday when I get up mornings on Sundays, I don't feel like, you know, Satan, because he comes with thoughts. I don't feel like I'm worthy to stand in this place.
कई बार जब मैं उठता हूँ रविवार के दिन, तो मुझे ये आभास होता है कि मैं इस लायक नहीं कि मैं यहाँ खड़े होकर प्रचार करूँ.
Because I haven't prayed enough, I haven't done this enough and that enough and blah blah blah.
और मैं क्योंकि मैंने ये उतना नहीं किया जितना करना चाहिए था, या वो उतना नहीं किया जितना करना चाहिए था.
But I was like, no devil, your tricks won't work.
लेकिन मैं कहता हूँ शैतान तेरी योजनाएं मेरे खिलाफ काम नहीं करेंगे.
I start focusing on Jesus and I say, Lord, thank you so much. Your sacrifice has made me righteous.
उसी समय अपना सारा ध्यान मैं यीशु की ओर लगाता हूं और कहता हूं, धन्यवाद यीशु, आपके बलिदान ने मुझे लायक बना दिया.
The sacrifice of Jesus has made you righteous.
यीशु के बलिदान ने आपको धर्मी बना दिया है.
Amen. And because he has made you righteous,
और क्योंकि यीशु ने आपको धर्मी बना दिया है,
man, you have all the right to stand boldly in his presence.
पूरा अधिकार है आपको, आप परमेश्वर की उपस्थिति में हिम्मत से खड़े हों.
We are not in the process of becoming righteous.
हम इस प्रतिक्रिया में नहीं है जहां हम धर्मी हो रहे हैं.
We are not in the process of becoming holy. Do you know that?
हम पवित्र होने की प्रतिक्रिया में नहीं है, क्या आप जानते हैं?
Bible says, Bible tells us to put on a new man which was created in perfect righteousness and holiness.
Bible हमसे कहती है कि उस नए मनुष्यत्व को धारण कर लो जो सच्ची पवित्र सच्ची धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया, बनाया गया.
I'll tell you an amazing thing and then we'll close.
एक अद्भुत बात देखेंगे फिर समाप्त करेंगे.
Isaiah 64:6, you don't have to go there, but it talks about how our good deeds are like filthy rags.
यशायाह 64 उसका 4, वहां जाने की जरूरत नहीं, पर वो बताता है कैसे हमारे धर्म कर्म के काम फटे चिथड़े कपड़ों के समान है, मैले कपड़ों के समान है.
If you think because you fast more, pray more, read the Bible more, you are more accepted in God's sight, that's a pharisaical mentality.
क्योंकि आप ज्यादा उपवास करते हैं, ज्यादा प्रार्थना करते हैं, इसलिए अगर आपको लगता है कि आप परमेश्वर की दृष्टि में ज्यादा ग्रहण योग्य हैं किसी और से, तो ये फरीसी की मानसिकता है.
You can never walk in faith. Such person will never walk in faith.
ऐसा व्यक्ति कभी विश्वास में नहीं जी सकता.
Because when he is puffed up because he has prayed for 18 hours, he's standing on his righteousness.
क्योंकि जब उसने 18 घंटे प्रार्थना कर ली है, वो सीना चौड़ा करके अपनी खुद की धार्मिकता पे भरोसा करके घूम.
And when he has not done that enough,
लेकिन जब वो नहीं कर पाया तो
so filled with guilt.
उसको बहुत दोष महसूस होगा.
And if you study this in Hebrew, that filthy rag, do you know what that is? I mean, like, don't feel bad, but that's what it's.
और जो लिखा है फटे पुराने चिथड़ों के समान है, अगर इब्रानी भाषा में पढ़ेंगे उसका क्या मतलब है?
Bible translators change the meaning. That's not what Bible says. That it's filthy rags.
Bible के जो अनुवाद करने वाले हैं उन्होंने उसका मतलब बदल दिया.
It is a menstrual cloth.
वो है जो एक स्त्री को महीने में होने वाले जो पीरियड्स हैं उसका कपड़े की बात करता है वो.
The Bible, that's what it says in Hebrew.
ये है जो इब्रानी भाषा में लिखा है.
That our righteous works are like that.
कि हमारे अच्छे काम परमेश्वर के सामने ऐसे हैं.
As a woman uses the cloth and throws it away, and in Christianity I've seen some people have framed it and they say, look how righteous we are.
और कुछ लोगों ने मसीहत में अपने इन बातों की इतनी बड़ी डींगे हाँकी और कहा है कि देखो हम कितने धर्मी हैं.
Every day you can go before your father's presence boldly knowing that you are accepted in the beloved.
हर दिन आप अपने पिता के सामने जाके खड़े हो सकते हैं ये जानते हुए कि उसने आपको ग्रहण कर लिया है क्योंकि आप धर्मी हो, आप पवित्र हो.
Know this for sure that he will never ever cast you away from his presence.
स्पष्ट रूप से इस बात को जान लीजिए कि कभी भी परमेश्वर आपको अपनी उपस्थिति से नहीं निकालेगा.
The sacrifice of Jesus is so much bigger than what you do.
यीशु का बलिदान आप जो कुछ कर सकते हैं उससे इतना ज्यादा महान, इतना ज्यादा बड़ा है.
And because we stand on the righteousness of Jesus, That's why we can stand on faith every day.
और क्योंकि हम यीशु की धार्मिकता पे खड़े हैं, इसलिए हम विश्वास में हर रोज खड़े रहते हैं.
Amen. Even then, because Satan will try to bring condemnation in your heart.
और तब भी जब शैतान आप पर दोष लगाने की कोशिश करेगा, फिर भी.
When you are trying to command the mountains, he will tell you, you are not worthy. You forgot. You missed here.
जब आप पहाड़ को आदेश देंगे उखड़ जाने के लिए, तो शैतान आपको दोष लगाएगा, बोलेगा तू इस लायक नहीं कि आदेश देख. देख तूने यहाँ गलती की थी, तूने वहाँ गलती की थी.
But you can be bold and say, I am not standing on my righteousness. I am standing on the righteousness of Jesus, and His righteousness is an everlasting righteousness, and nobody can take that righteousness from me.
लेकिन आप हिम्मत करके इस बात को अपने मुंह से कह सकते हैं कि मैं अपने अच्छे कामों के बलबूते यहाँ नहीं खड़ा हूँ, मैं उस धार्मिकता के भरोसे खड़ा हूँ जो यीशु ने मुझे धर्मी बनाया, जिसके द्वारा, क्योंकि वो धार्मिकता अनंत तक बनी रहेगी.
Amen.
Thank you for tuning into our podcast. We hope you had an amazing time. Check out more podcasts on our channel for a rich diet of God's Word.
हमारे पॉडकास्ट सुनने के लिए धन्यवाद. हम आशा करते हैं आपका समय आशीषित रहा. परमेश्वर के वचन की भोजन की अच्छी खुराक के लिए आप हमारे चैनल पर दूसरे पॉडकास्ट भी सुनें.